श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8 और श्लोक संख्या 224 से हम कहाँ तक जाएंगे, 229 तक। तो इसमें तात्पर्य किसी में है तो थोड़े तात्पर्य हैं। तो श्लोक संख्या 24 है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। निभृत मरुन मनोक्षत्र हृदय मुनय उपासते तदरयोपी ययुस्मरणात् स्त्री उर्गेन्द्र भोग भुज दंड विसक्त धियो वयमपि ते समासंग सोंघ्री सरोज सुधा। बड़े बड़े मुनि योगाभ्यास तथा प्राणायाम द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में प्रवृत्त होकर वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं और अंततः निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु ये पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु भी उनका केवल चिंतन करके प्राप्त करते हैं। सुने सब लोग ध्यान से, कितना आश्चर्य है। कितने लोग समझा तो रही नहीं। ये जो कक्षा है ऐसे बैठने के लिए नहीं, खाली बैठ रहे हैं और अपनी ड्यूटी पूरी हो गई, बस बैठने की ड्यूटी इसलिए बैठे, ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से। बड़े बड़े मुनि योगाभ्यास तथा प्राणायाम द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में प्रवृत्त होकर वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं। कितना परिश्रम और कितना समय लग रहा है, कितना परिश्रम, और अंततः निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? निर्विशेष ब्रह्म में। किंतु ये पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु भी उनका केवल चिंतन करके प्राप्त करते हैं। इतना परिश्रम करके आपने निर्विशेष ज्योति प्राप्त कर ली, आप निराकार में आप लीन हो गए, तो ये तो जो है उनके शत्रु भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना परिश्रम फिर क्यों, इतना परिश्रम किया क्या फायदा है? किंतु अब किंतु सुनिए, किंतु का मतलब कुछ अलग बात है। किंतु ब्रजांगनाएं अर्थात गोपियां कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर कृष्ण का और उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती थीं। इस प्रकार उन्होंने अंततोगत्वा भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन किया। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अमृत का आस्वादन नहीं होता शत्रुओं को, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं निराकार। और जो बड़े बड़े योगी हैं, मुनि हैं, वे भी प्राणायाम के द्वारा मन इंद्र को जीतते हैं और निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो कृष्ण के चरण कमलों का अमृत का आस्वादन ना भी कर पाते हैं। लेकिन गोपियां क्या उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर कृष्ण का और उनकी सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती हैं, तो वे कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करती हैं। तो ये कुछ विशेष बात है जो गोपियों में है, बड़े बड़े मुनियों में नहीं। और गोपियां शिक्षित भी नहीं है, गांव की स्त्रियां हैं। क्या काम करती हैं? गोबर उठाती हैं, गोरस बनाती हैं, कुछ उनके पास फुर्सत थोड़ी है, प्राणायाम करने की भी फुर्सत नहीं है, ना कोई बड़े बड़े सिद्धांत सुनने की फुर्सत है। ये समझती भी नहीं है कि कृष्ण कौन है। कृष्ण एक गोप बालक हैं, अभी उनके सौंदर्य से आकृष्ट है। नंद गोप सुतम देवी पतिम में क्रूते न, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो। कृष्ण को इतने जानते हैं नंद गोप के पुत्र हैं और उनके सौंदर्य से आकर्षित होती हैं और सर्प जैसी भुजाओं का आलिंगन करना चाहती हैं। केवल इतना ही उनकी योग्यता है, जो कि किसी स्त्री का आकर्षण होता है किसी पुरुष के प्रति, तो वही आकर्षण गोपियों का है। इस प्रकार उन्होंने अंततोगत्वा भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन किया। इसी तरह हम उपनिषद भी श्रुतियां कह रही हैं, ये श्लोक जो है श्रुतियों के द्वारा कहा गया है, जो श्रुतियां हैं। इसी प्रकार हम श्रुतियां भी गोपियों के पद चरणों पर चलकर कृष्ण के चरण कमलों का अमृत चख सकती हैं। यहां पर कृष्ण कहा गया है, जबकि यहां पर आया है ते, यानी आपके चरण कमलों का हम रस पाना चाहती हैं। तो श्रुतियां जो श्रुतियां हैं, तो वे कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ये कामना है, हमें अगर आप कुछ दीजिए तो ये वरदान दीजिए। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो कुछ ऐसी चीज मांगो जो सबसे ऊंची हो, जिससे बढ़कर कुछ ना हो। और वो क्या है, कृष्ण के चरण कमलों का रस आस्वादन करना। अब इस श्लोक की व्याख्या पहले तात्पर्य प्रभुपाद का है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवत 10:87-23 से लिया गया है, जो मूर्तिमान वेद रूपी श्रुतियों द्वारा कहा गया है। तो श्रुति यहां भी जो है गोपियां बनती हैं, और ब्रज में इस प्रकार 100 यूथ हैं गोपियों की, अलग अलग श्रुति रूपा गोपियां उनमें से एक। इन श्रुतियों ने प्रार्थना की थी, वेदों की जो ऋचाएं हैं इन्होंने प्रार्थना की, तो यही गोपियां बनी। सोचिए, श्रुति रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, दंडकारण्य के जो ऋषि थे वे भी गोपियां बनी, ऋषि रूपा गोपी, और जनकपुरवासिनी गोपियां, अयोध्या पुरवासिनी गोपियां, कौशल पुरवासिनी गोपियां, पुलिंद कन्या गोपियां, शतल लोकवासिनी गोपियां, लोकाचल वासिनी गोपियां, वैकुंठ वासिनी गोपियां, देवांगना गोपियां, कितने अवतारों में भगवान से जो स्त्रियां आकर्षित हुई वे कृष्ण के अवतार में गोपियां बनी, है ना। तो अब प्यार संख्या 225 है। समदृशा शब्दे कहे से भावे अनुगति, समा शब्दे कहे श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति। पिछले श्लोक के चौथे चरण में उल्लिखित समदृशा शब्द का अर्थ है गोपियों के भाव का अनुगमन करते हुए। समदृश, समा का अर्थ है श्रुतियों द्वारा गोपियों जैसा ही शरीर प्राप्त कर दिया, श्रुतियां प्रार्थना करती कि हम उनके जैसा शरीर प्राप्त करें, गोपियों जैसा शरीर प्राप्त करें। अंग्रि पद्म सुधाय कहे कृष्ण संगानंद, विधि मार्ग ना पाए रजे कृष्ण चंद्र। अंग्रि पद्म सुधा का अर्थ है, इसमें है अंग्रि सरोज सुधा, अंग्रि सरोज सुधा या अंग्रि पद्म सुधा, एक ही मतलब है। पद्म का मतलब कमल, सरोज का मतलब कमल। अंग्रि पद्म सुधा का अर्थ है कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक संगति करते हुए, कृष्ण के चरण कमलों के रस का आस्वादन करने का अर्थ है कृष्ण के साथ घनिष्ठता पूर्वक संगति करना, है ना, जो कि बड़े बड़े योगियों को नहीं प्राप्त हुई, निराकार ज्योति में लीन हो गए। तो वो कृष्ण के घनिष्ठता का जो संग है, घनिष्ठ संगति नहीं प्राप्त कर पाते, है ना। तो यहां पर है कि आपके चरण कमलों के रस का हम आस्वादन करें, इसका मतलब है कृष्ण के साथ घनिष्ठता पूर्वक संगति करना है। तो कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ जो निराकारवादी हैं, योगी हैं, वे कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ संगति नहीं करते हैं, वे अव्यक्त के साथ संगति करते हैं। अव्यक्त जिसमें कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, है ना। क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों के रस का स्वादन करना का मतलब कृष्ण की पर्सनालिटी का संग करना है, आस्वादन करना है, है ना। ऐसी पूर्णता, ये पूर्णता, ऐसी पूर्णता एकमात्र भगवान के रागानुग प्रेम द्वारा मिल सकती है। केवल विधि विधानों द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रागानुग, रागानुग का मतलब है कि यहां पर रागानुग का अर्थ है कि जैसे आकर्षण होता है, स्त्री के पुरुष से आकर्षण होता है ना, तो ऐसी गोपियां आकर्षित हो रही हैं कृष्ण के प्रति। अब स्त्री पुरुष का आकर्षण ये तो जो है भौतिक जगत में जो होता है काम वासना है, काम वासना है, और यही आकर्षण जब कृष्ण के प्रति होता है तो शुद्ध प्रेम, और प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था होती है ना। तो ये निंदनीय है, किसी स्त्री का किसी पुरुष से अगर आकर्षण हो जाता है तो ये निंदा की बात है, और विशेष रूप से जब कोई पराया पुरुष होता है तो ये बड़ी निंदा की बात है। लेकिन यही वही जो है प्रेम कृष्ण के प्रति जब होता है, और कृष्ण है पराये पुरुष हैं, जार पुरुष हैं, तो ये आकर्षण जो है बहुत प्रशंसा का विषय बनता है, बहुत प्रशंसा की बात है। तो यहां पर रागानुग प्रेम द्वारा ऐसी पूर्णता प्राप्त हो सकती है, केवल विधि विधानों द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैकुंठ की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मताम है। यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हुए हैं, किंतु वे शुष्क चिंतकों, कठिन व्रत तथा तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा मानने वालों को इतनी सरलता से सुलभ नहीं है। इसमें बताया गया ये जो श्लोक है कि देही नाम, देही नाम का मतलब है देहधारी, यानी देह में जो आ सकते हैं, तो इतनी आसानी से भगवान जो माता यशोदा के पुत्र हैं देहधारियों को प्राप्त नहीं होते। तो देहधारी का मतलब है देह में जो आ सकते हैं या देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं, देह को ही आत्मा मानने वाले हैं, उनको आसानी से नहीं प्राप्त होते। और फिर ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम, फिर ज्ञानी जो आत्मभूत हैं, यानी देहभूत नहीं है, देहात्म बुद्धि में नहीं है, आत्मभूत है, तो उनको भी नहीं प्राप्त होते आसानी से। दोनों बात है, एक देहात्म बुद्धि में जो फंसे हैं उनको आसानी से नहीं प्राप्त होते यशोदा के पुत्र कृष्ण, लेकिन जो ज्ञानी है आत्मभूत हैं, देहात्म बुद्धि में नहीं है बल्कि जो आध्यात्मिक बुद्धि में है, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित है, ज्ञानी नाम चांद भूताना, तो उनको भी नहीं प्राप्त होते आसानी से। यथा भक्ति मदान, जिस प्रकार से भक्ति मानों को प्राप्त होते हैं, भक्ति मदान, अगर भक्ति नहीं है तो आप चाहे आत्मभूत हैं और चाहे देहभूत हैं, दोनों स्थिति में आप भगवान को आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते। और भक्ति मान है अगर आप, तो यशोदा पुत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य प्रभुपाल लिखते हैं, ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.9.21 का है, जिसे श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। तो 10.9.21 तो दाम बंधन लीला है, माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, तो ये इतने कृष्ण जो है माता यशोदा के वश में है कि माता यशोदा उनको बांध भी सकती है, तो वे उनको बंधना पड़ेगा, इतना नियंत्रण है माता यशोदा का। तो इस बात पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये श्लोक, इतना नियंत्रण कौन कर सकता है कृष्ण के ऊपर, यथा भक्ति मता है ना। तो यहां लिखा उस, ये उस प्रसंग में आता है जिसमें भी माता यशोदा तथा कृष्ण के अन्य भक्तों का महिमा गान करते हुए कहते हैं कि गोपियां किस तरह कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर सकती हैं। प्यार संख्या 228 है। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रे बिहार। अतः मनुष्य को गोपियों के सेवा भाव को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे दिव्य भाव में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ये रामानंद राय के बीच में वार्तालाप चल रहा है भगवान चैतन्य का, और भगवान चैतन्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं राय रामानंद, और ये सबसे ऊंचा जीवन का लक्ष्य है। क्या कि अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, गोपी भाव को अंगीकार करके रात दिन राधा कृष्ण का विहार का चिंतन करें। अच्छा प्यार संख्या 229 है, आपको मेरे पीछे बोले सिद्ध देहे चिंती करे तहां ही सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण रे चरण, दाद बोली सिद्ध देहे सिद्धावस्था में चिंती स्मरण करके करे करता है तहां ही आध्यात्मिक जगत में सेवन सेवा, सखी भावे गोपी भाव में पाए पाता है राधा कृष्ण रे, राधा और कृष्ण के चरण चरण कमल। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए राधा कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का दीर्घ काल तक चिंतन करने और भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जगत को चला जाता है, वहां भक्त को गोपी के रूप में राधा तथा कृष्ण की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ने से पहले जो प्यार है इसके शब्दों पर विचार करेंगे। इसमें रामानंद राय क्या कह रहे हैं, सिद्ध देहे चिंती करे तहां ही सेवन। तो सिद्ध देह के द्वारा, सिद्ध देह का मतलब है ज्ञानियों की जो स्थिति है वो आत्मभूत स्थिति है, तो भी उनकी स्थिति सिद्ध देह की नहीं है। ज्ञानी लोग जो है अध्यात्म स्थिति में है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन उनके पास वो आध्यात्मिक शरीर नहीं है, ना उनके पास उस आध्यात्मिक शरीर का ज्ञान है जो उनका वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा में। वे आत्मभूत होते हैं केवल इतने इतने अंश में आत्मभूत होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर नहीं हूं लेकिन मैं क्या हूं ये वे नहीं जानते। तो मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण का दास हूं तो किस भाव में मैं दास हूं, तो कोई जो है दास भाव में है और कोई सखा भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में है। तो सिद्ध देह का मतलब क्या है कि वो भी पता चल जाता है कि कौन सा भाव है मेरा, कौन सा भाव है, दास भाव है या वात्सल्य भाव है, सखा भाव है या माधुर्य भाव है। सिद्ध देह का ये मतलब है कि अपना भाव भी पता चल जाता है और उसमें जो है चिंती करे। तो अगर माधुर्य भाव में उसको पता चल गया कि मेरा स्वरूप माधुर्य भाव में है तो सिद्ध देह में वो चिंतन करे, चिंती करे तहां ही सेवा। चिंतन करना ही उनकी सेवा करना, उस भाव में अगर चिंतन करते हैं राधा कृष्ण का माधुर्य भाव में तो वही सेवा है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, तो चिंतन करने से ही सेवा होती। चिंती करे तहां ही सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण के चरण। तो सखी भाव में जो है चिंतन करे तो राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करें। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि सिद्ध देह शब्द का अर्थ है परिपूर्ण आध्यात्मिक देह। तो इससे बढ़कर के पूर्णता और कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाता है तो यह पूर्णता नहीं है। तो यहां पर बताए परिपूर्ण, अगर उसको पूर्ण कहें तो पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम, इस तरह से शब्द होते हैं ना कि सबसे अधिक पूर्ण स्थिति परिपूर्ण आध्यात्मिक देह सिद्ध देह का आगे। और ये पांच तत्वों से बने भौतिक स्थूल देह और मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से बने सूक्ष्म देह से परे है। दो शरीर हैं हमारे, ये दोनों भौतिक शरीर हैं, स्थूल शरीर विभौतिक है और सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है। स्थूल शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर तीन मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है ना। लेकिन ये इससे भी परे, सिद्ध दे इससे परे आगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण की सेवा करने के योग्य पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सब उपाधियों से मुक्त। उसकी केवल एकमात्र उपाधि यही है कि मैं गोपी भरतो पद कमलयो दास दासानुदासा, कि मैं उनके दास का दास हूँ, गोपी गोपियों के पति के चरण कमलों के दास का दास, या दासी की दासी, सखी भाव में दासी, तो अपने को दासी या दास। अगर पुरुष है दास भाव सखा भाव तो दास, और अगर सखी भाव है गोपी भाव है तो दासी। तो यही उपाधि है, और बाकी बहुत उपाधियां कोई नहीं है कि मैं भारतीय हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, या मैं गोरा हूँ, काला हूँ, है ना, अमरीकी हूँ, चीनी हूँ, ये सब जो है उपाधियां नहीं। इन उपाधियों से बिल्कुल वो मुक्त है, बहुत उपाधियों से मुक्त है, ये उसकी उपाधि आध्यात्मिक उपाधि है, तो वो आध्यात्मिक शरीर। आगे, मनुष्य जब अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होता है जो इस स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर से परे है, तभी वो राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य होता है। राधा कृष्ण की सेवा इस भौतिक शरीर से हम नहीं कर सकते, राधा कृष्ण अपनी दया से अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि हम उनकी सेवा करें, और ये उनकी बहुत कृपा है कि इस तरह से वे सेवा करने का अवसर देते हैं कि हम भौतिक शरीर से भी उनकी सेवा कर सकें। लेकिन उनकी जो साक्षात सेवा है वो कैसे होगी? आध्यात्मिक शरीर से, सिद्ध देह से, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, ये शरीर सिद्ध देह कहलाता है। जीव को पूर्व कर्मों तथा मानसिक अवस्था के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जितने भी स्थूल शरीर प्राप्त होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं? पिछले जन्म के कर्म और मानसिक अवस्था यानी इच्छा, आपकी कैसी इच्छा है और कैसे कर्म है उनके अनुसार आपको यह शरीर प्राप्त हुआ है। सभी जीवों को एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इस जीवन में मानसिक अवस्था तरह तरह से बदलती है, कर्म भी बदलते हैं और मानसिक अवस्था इच्छाएं भी बदलती हैं, और वही जीव अपनी इच्छाओं के अनुरूप अगले जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त करता है। जैसे इस शरीर में किसी की इच्छा होती है कि सब तरह का भोजन खाओ, कुछ अंतर मत करो, है ना, तो उसको अगले जीवन मिल जाएगा सुअर का सब तरह का भोजन। किसी की इच्छा होती है कि अपने शरीर का जो है वो प्रदर्शन करे, अपने शरीर को प्रदर्शन करे, अपने शरीर दिखाते हैं, वस्त्र उठा उठा करके अपना शरीर दिखाते हैं, तो उनको शरीर प्राप्त होता है वृक्ष का, है ना। तो अलग अलग जो है इच्छाएं होती हैं जीव की, और उन इच्छाओं के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्राप्त। कर्म और इच्छाएं दोनों का जो है हिसाब होता है कि कर्म कैसे हैं। तो जहां आगे ऊपर लिखते हैं, मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में सदैव तत्पर रहते हैं। ये मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों जो है क्या है कि चूंकि भौतिक हैं, भौतिक आवरण है, तो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में सदैव तत्पर रहते हैं, यानी प्रकृति को भोगना चाहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मनुष्य को स्थूल शरीर मिलता है, तो सूक्ष्म शरीर इस प्रकार से बदलता है। पहले सूक्ष्म शरीर ही बदलता है, तब उसको स्थूल शरीर प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति अगर अपने इस जीवन में कुत्ते की तरह कर्म करता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। तो शरीर छोड़ता है तो यमराज जो है यमराज के सामने खड़ा होता है और वो कहते तुम कुत्ता बन जाओ, तो कुत्ता बन जाता है। तो सूक्ष्म शरीर उसका कुत्ता बन गया, अब जो है वो जब किसी स्थूल शरीर में जाएगा तो कुत्ते के ही शरीर में जाएगा, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर जैसा बन जाता है उसी प्रकार का स्थूल शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर बनता है आपके कर्म और इच्छाओं के अनुसार। आगे, उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मनुष्य को स्थूल देह मिलता है, जिससे वो अपनी इच्छित वस्तुओं का भोग कर सके। आगे, वर्तमान देह के कार्यों के अनुसार मनुष्य अन्य सूक्ष्म शरीर तैयार करता है, और इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। यही भौतिक जगत का नियम है। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेता है और स्थूल या सूक्ष्म शरीर की कामना नहीं करता, तो उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो ये विधि है भक्ति की। भक्ति की विधि के द्वारा आप अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हैं, मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करते हैं, उनका भौतिक आवरण हट जाता है, तो आपका जो शुद्ध मन है, आध्यात्मिक मन है, वो रह जाता है। हाँ, आपकी जो बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक अहंकार, ये रह जाते हैं, भौतिक आवरण हट जाता है ना। तो फिर वो आध्यात्मिक शरीर जो है आपका प्रकट हो जाता है, और फिर आध्यात्मिक शरीर आपको प्राप्त होता है, उससे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसा कि भगवद गीता 4:9 में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसके पहले की पंक्ति क्या है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, इनको तत्व से जानो। तो जो चिंतन करता है कृष्ण के जन्म और कर्मों का, तो उसका आध्यात्मिक शरीर बन रहा है। तो इस जीवन काल में अगर वो कृष्ण के जन्म कर्मों का चिंतन करता रहता है, तो इस जीवन काल में ही उसका आध्यात्मिक शरीर पूरा विकसित हो जाता है, और फिर स्थूल शरीर छोड़ता है वो, तो उसको फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, विकसित हो जाता है आध्यात्मिक शरीर, है ना। आगे, मनुष्य आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होता है, और गोलोक वृंदावन अथवा अन्य किसी वैकुंठ लोक में स्थित होता है। तो जो अपना अपना स्वरूप है, तो वही जागृत होता है। अपना जो स्वरूप है, तो वो अभी क्या है कि वो सिकुड़ करके एक अणु सूक्ष्म आत्मा के रूप में है। वो हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो सिकुड़ गया है, इतना सिकुड़ गया है कि बाल की नोकी 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया है ना। वो सिकुड़ गया है ना। अभी हमारा आध्यात्मिक शरीर एक प्रकार से नष्ट हो गया है ना। तो अब जो है वो इंद्रियां सिकुड़ गई हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर में जो इंद्रियां होती हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए हैं। लेकिन अगर जीव भोग वांछा करता है, कृष्ण की सेवा को छोड़ कर, तो आध्यात्मिक शरीर की जो इंद्रियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अब उसको भौतिक इंद्रियां चाहिए, तो उसको भौतिक शरीर प्राप्त होता है, भौतिक इंद्रियां प्राप्त होती हैं। तो अब जो है उसको इंद्रियां और शरीर ये सब चाहिए, है ना। लेकिन वही भक्ति की विधि के द्वारा वो जो भौतिक आवरण है हमारा समाप्त हो जाता है, और कृष्ण की सेवा की जो इच्छा है वो जब जागृत हो जाती है, तो हमारा आध्यात्मिक शरीर फिर से विकसित होने लगता है, ठीक है ना। और आध्यात्मिक शरीर पूरा विकसित हो जाए, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो यहाँ प्रभु बोलते हैं आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होता है। लेकिन भौतिक चिंतन करता है जीव, तो इस जीवन में उसने जो है अगर कुत्ते की तरह चिंतन किया है, तो कुत्ते का जो शरीर है उसका वो सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, और सूक्ष्म शरीर कुत्ते का उसका जब हो जाता है, तो इस शरीर से निकल करके कुत्ते के स्थूल शरीर में वो जाता है। तो इस तरह से जो देहांतरण चलता रहता है, और कभी कुत्ते का शरीर मिलता है, कभी सुअर का, कभी बकरा, कभी मेंढक, ऐसे शरीर बदलता रहता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर कृष्ण के जन्म कर्म का चिंतन करता है कोई जीव, तो उसका आध्यात्मिक शरीर विकसित हो रहा है। तो भगवान ने गीता में बहुत सरल विधि बताई। आप अगर कृष्ण के जन्म कर्म का चिंतन करते हैं, और अगर तब तो नहीं भी जानते और कृष्ण के जन्म कर्म का चिंतन करते हैं तो आपका अध्यात्म से निवेशित होता है। यह तत्व से अगर जानते हैं तो फिर ज्यादा संभावना है कि आप चिंतन करेंगे। तो तत्व से जानना यह सहायक है कि कृष्ण के जन्म कर्मों का आप चिंतन करें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि और वो आध्यात्मिक शरीर जो है अपना स्वरूप होता है, तो इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे तो गोपी का शरीर चाहिए। जैसे माधवेंद्रपुरी हैं, वो जो है गुरुधाम के वृक्ष हैं, तो वो तो वृक्ष हैं, तो वहां पर वृक्ष भी जो है पूर्ण चेतन है ना, कोई अंतर नहीं है। जैसे यहां पर तो ये जो है स्थावर कहलाते हैं ना वृक्ष, तो ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, है? और ये स्थावरा लक्ष्मी विंशति 20 लाख प्रकार के हैं योनियां, तो बहुत बड़ा दंड है कि किसी को 20 लाख प्रकार की योनियों में से कोई स्थावर योनि प्राप्त हो जाती, क्योंकि वो तो बिल्कुल निद्रा की अवस्था है, अचेत अवस्था है। इन गोलोकधाम में कोई शरीर प्राप्त होता है, वृक्ष का शरीर भी प्राप्त होता है, पक्षी का शरीर, पशु का शरीर, तो पूर्ण चेतन, पूर्ण आध्यात्मिक है, उसमें कुछ है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कुछ नहीं है, भौतिक तत्व नहीं है इसमें, आप समझे, पूर्ण आध्यात्मिक है। और उसी में ही वो संतुष्ट भी है, वृक्ष का शरीर प्राप्त करके भी संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है। तो हाँ, वैकुंठ में अगर आपका स्वरूप है तो वैकुंठ में आप जाएंगे, गोलोक धाम में अगर आपका स्वरूप है तो आप गोलोक धाम जाएंगे, तो कोई अंतर नहीं है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक शरीर में भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती, आध्यात्मिक शरीर में भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती, आध्यात्मिक शरीर में अपने उसी में ही संतुष्ट है वो। यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, आध्यात्मिक शरीर में फिर ये नहीं होता है कि नहीं नहीं मुझे तो माता यशोदा बनना है, मैं जो है वृक्ष क्यों बना हूं, मुझे तो माता यशोदा बनना है, या मुझे राधा रानी बनना है, मुझे कोई गोपी बनना है, मुझे तो गोपी भाव प्राप्त करना है, ये भी नहीं है। गोपी भरदूपत कमले और दास दास अनुदान, मैं दास के दास का दास 100 बार और 1000 बार नीचे दास बन जाऊं तो पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि। किसी की ऊपर उठने की इच्छा नहीं होती, जैसे यहाँ किसी फैक्ट्री का कोई जो है मैनेजर है ना, तो फिर वो चाहता है कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊँ, फिर मैं जो है कोर्ट डायरेक्टर बन जाऊँ, डायरेक्टर बन जाऊँ। यहाँ तो सब ऐसे ही है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसके नीचे हैं आप उसी के नीचे संतुष्ट हैं, आपके अंदर जरा भी इच्छा नहीं होती है कि उसकी टांग खींचूं और मैं ऊपर जाऊं, नहीं है, पूर्ण संतुष्टि है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक शरीर में भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती हैं और मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की सेवा करके परम संतुष्ट रहता है। ये भक्ति का पद है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते। जब आध्यात्मिक शरीर मन तथा इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तब, क्या समझे, जब आध्यात्मिक शरीर मन तथा इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी प्रेयसी की सेवा कर सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी है, तो वहां भी कोई कमी नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं वैकुंठ में तो कमी है, हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते, हम तो गोलोकधाम जाना, गोलोकधाम ऊपर है, वैकुंठ से ऊपर गोलोकधाम है, और गोलोकधाम में भी जो है हमें गोपी भाव प्राप्त करना, हम तो गोपी भाव पाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। वैकुंठ लोक में भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी है और गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी है। मनुष्य भौतिक कलमश से रहित आध्यात्मिक शरीर द्वारा राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण की सेवा कर सकता है। क्या राधा कृष्ण की सेवा करें या लक्ष्मी नारायण की सेवा करें, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और रस की दृष्टि से उसमें ज्यादा रस है, अगर कहें भाई ज्यादा रस है तो ये तो आप जब रस के बाहर आते हैं तभी देख सकते हैं कि भाई ज्यादा है या थोड़ा। जैसे मछली हो, छोटे समुद्र में है या बड़े समुद्र में है, उसके लिए तो वो छोटा समुद्र भी अनंत है, उसको भी अंत ही नहीं है। तो लक्ष्मी थोड़ी, ये मसीह थोड़ी सोचेंगे कि मैं छोटे समुद्र में हूं, मुझे बड़ा समुद्र चाहिए। वो छोटा समुद्र भी उसके लिए तो अनंत है। तो वैकुंठ में भी अगर हम जाएं तो अनंत है वहां का, सब कोई अंत नहीं। वो तो समुद्र से बाहर निकले तो कहें भाई ये छोटा समुद्र है, बड़ा समुद्र है, ये तो बाहर की बात है। तो इस तरह से भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा यही आप कहें। ये हमेशा कहने की बात नहीं है कि नहीं नहीं वैकुंठ में जो है वो चीज नहीं जो गोलोक धाम में है। ये बात जो है कभी कभी कही जाती है, हमेशा नहीं कही जाती है ना। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, है ना। देखो प्रभुपाद की जो बात है कितनी पूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य भौतिक कलमश से रहित आध्यात्मिक शरीर द्वारा राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण की सेवा कर सकता है। जब मनुष्य इस तरह आध्यात्मिक रूप से अवस्थित हो जाता है तो वो खुद अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता। उसे जो सुख प्राप्त होता है वो बिना प्रयास के सुख प्राप्त होता है और असीमित सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो तो कोशिश करता है भगवान को सुख प्रदान करने, सुख पाने की चेष्टा नहीं करता। वो सुख प्राप्त होता है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत जिसका अंत नहीं। और यही संस्पर्श जाप होगा दुखी योग न एवते आद्यंत बंता कौन ते, आदि वंत और अंतवंत जो इंद्रियों के भोग हैं आदिवंत और अंतवंत होते हैं। एक समय जो है शुरू हो जाता है सुख और फिर एक समय बंद हो जाता है, फिर उल्टा उससे दुख मिलने लगता है, फिर समय के बाद फिर उसमें सुख उत्पन्न होता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है, फिर सुख समाप्त हो जाता है, फिर दुख मिलने लगता है, फिर दुख समाप्त होता है, फिर सुख उत्पन्न होता है। तो इंद्रियों के जो विषयों से जो भोग हैं वो आदि अंत बनता कौन, दुख ही होना गिरते दुख देने वाले, दुख भी उत्पन्न करेंगे वो। आप इंद्रियों को भोगेंगे तो दुख भी उत्पन्न करेंगे। लेकिन ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ब्रह्म का जो सुख है वो कैसा होता है, अनंत होता है। तो दुख उत्पन्न नहीं करता इंद्रियों के भोगों से जो है, तो सुख उत्पन्न होता है और फिर सुख अंत होता है तो फिर दुख शुरू होता है। तो दुख क्यों नहीं हो गया ना, दुख उत्पन्न करता है। लेकिन ब्रह्म सुख क्या होता है, अनंत होता है, तो वो कभी घटता ही नहीं है, कभी समाप्त ही नहीं होता है, तो दुख कहां से आएगा। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि वो खुद, तब वो अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता। ये आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह कहलाता है। एकमात्र राधा कृष्ण की सेवा करना है, केवल यही उसका चिंतन होता है ना। सिद्ध देह कहलाता है अर्थात ऐसा शरीर जिसके द्वारा मनुष्य राधा तथा कृष्ण की दिव्य सेवा कर सकता है। इसकी विधि यही है कि दिव्य इंद्रियों को प्रेममयी सेवा में लगाया जाए। अब प्रारंभिक स्थिति क्या है कि इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, है ना। इस तरह का है ना, कुछ कोई श्लोक है ऐसा इंद्र, हाँ धन्यवाद। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह इंद्रिय सेवोन्मुख ही जिहवादो स्वयं में स्फुरत। और जिहवा से हम सेवा शुरू करते हैं, और जिहवा जो है ये कर्म इंद्रियों में भी पहली इंद्रिय है और ज्ञान इंद्रियों में भी पहली इंद्रिय है। कर्म इंद्रियों में जिहवा के द्वारा आप बोलते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का आप उच्चारण करें, तो शुरू आप जो है कर्म इंद्रियों में से सबसे पहली जिहवा इंद्रिय के द्वारा आप कृष्ण की सेवा शुरू करते हैं। और ज्ञानेंद्रियों में भी जो जिहवा है ये सबसे पहली इंद्रिय है जो स्वाद लेती है, तो आप प्रसाद का स्वाद लीजिए, प्रसाद के अलावा और कुछ ना खाइए। तो फिर सभी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी। शुरू करते हैं जिहवा के द्वारा, सेवोन्मुखी जिहवा दो, है ना। यहां प्रभुपाद लिखते हैं इसकी विधि यही है कि दिव्य इंद्रियों को प्रेममय सेवा में लगाया जाए। इस श्लोक में सखी भावे पाए राधा कृष्ण रे चरण का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि गोपियों के भाव में आध्यात्म रूप से उन्नत व्यक्ति ही राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग सकता है। यहां सखी भाव कहा गया है, सखी वैसे तो सखी भाव गोपी भाव एक ही है, लेकिन जब ज्यादा गहराई से विचार करते हैं तो गोपियां और सखियां और मंजरियां अलग अलग हैं। गोपियां जो है, गोपियां क्या है, ये राधा रानी से अलग स्वतंत्र उनके जो है यूथ होते हैं। गोपियों के अपने अपने यूथ होते हैं, राधा रानी का अपना यूथ है, तो अलग अलग। तो वे कृष्ण से प्रेम करती हैं राधा रानी से स्वतंत्र होकर के, अपना उनका एक यूथ होता है, तो वे गोपियां है ना। और सखियां कौन है, सखियां हैं जो राधा कृष्ण के बीच में कार्य करती हैं, राधा कृष्ण को मिलन कराने का कार्य करती हैं। तो उनका दोनों से संबंध, राधा रानी से और कृष्ण से दोनों से संबंध होता है, दोनों के बीच में मध्यस्थ होती हैं राधा कृष्ण के मिलन में के लिए जो जो आवश्यक कार्य हैं वो करती हैं सखियां हैं। और मंजरियां, मंजरियां बिल्कुल राधा रानी के पक्ष में रहती हैं, उनको कृष्ण से कोई मतलब नहीं, राधा रानी से। तो वे कृष्ण से ज्यादा जुड़ी हैं, वे कृष्ण की ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि कृष्ण की आत्मा कौन है, राधा रानी। तो राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं वो, और कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। अगर अगर जो है कृष्ण राधा रानी को त्याग दें तो उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं तो कृष्ण से उनको कोई मतलब नहीं है, वे राधा रानी से मिले, कृष्ण से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो मंजरी, तो हमारे जो आचार्य हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरदी ठाकुर कल, इनका आविर्भाव दिवस था, नयन मणि मंजरी, और नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी, गुण मंजरी, इस तरह से जो है रूप गोस्वामी रूप मंजरी, ये सब मंजरियां हैं। तो ये जो राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं। तो ये कृष्ण, राधा कृष्ण का चरण ये प्राप्त करते हैं, कृष्ण के चरणों का रस प्राप्त करते हैं सबसे अधिक। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? अच्छा, 1 2 3, 3 4, 4 ठीक
है। हरे कृष्ण जी, आपने शुरुआत में तात्पर्य में आया था कि अगर किसी योगी को परमात्मा भी दिख जाए हृदय में, फिर भी वो भ्रमण में जाके लीन होता है, तो पर उसको तो भगवान के रूप का साक्षात्कार हो चुका है, तो वो
नहीं,
उसमें
इसमें
ब्रह्म
ये
ज्योति में
बताया
कुछ।
था तात्पर्य में, ये बताया कि कौन से तात्पर्य में है? अच्छा, 224 में उसमें बताया है कि अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं। आइए से अच्छा प्रश्न है। निभृत मरुण मनोक्ष दृढ़ योग ये जो हृदयन मन उपासते तद अर्योपि स्मरणात्। तो यहाँ पर बताया गया है कि हृदय में वे दर्शन करते हैं, ये हृदय में दर्शन करते हैं परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो परमात्मा को भी निराकार मानते हैं, ये ज्योति, ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो हृदय में भी वे परमात्मा, ये ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ परमात्मा संस्कृत में शब्द नहीं है, ये बताया गया है कि जो 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 हृदयन मन उपासते, उपासना करते हैं एकांत में, उपासना करते हैं, तो एकांत में उपासना करते हैं, तो वो परमात्मा, अगर अनुवाद में लिखा भी है तो परमात्मा का मतलब वही समझो कि वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। और आजकल लोग, बहुत से लोग बोलते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा है, निराकार, निराकार का ही उपासना करते हैं। या परमात्मा का अगर चिंतन करते भी हैं तो उसमें अपनी पहचान कर लेते हैं कि ये मैं ही हूँ, तो वो भी अपराध है, और उनको योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो है प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते, परमात्मा से बातचीत भी नहीं उनकी हो पाती, और वो गलती से परमात्मा में अपनी पहचान करते हैं, योग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा? हाँ
जी, मेरे दो प्रश्न थे। पहला कि जैसे कोई वात्सल्य भाव में होता है तो भगवान को अपना बच्चा मानता है, बच्चे के रूप में, कोई सखा भाव में होता है तो मेरा सखा है मानता है, कोई दास रूप में होता है तो अपना मास्टर मानता है, और माधुर्य रूप में भगवान को अपना प्रेमी मानता है। तो जो मंजरियां हैं वो माधुर्य रूप में हैं, तो भगवान के साथ वो भगवान के साथ उनका कुछ मतलब वो भगवान के साथ रहना तो चाहती नहीं, वो राधा रानी की सेवा करना चाहती, तो ये कैसे समझे कि माधुरी भगवान में तो है लेकिन।
मंजरियां जो है इनका, इनकी जो अवस्था है वो 12-13 साल की है। इनका शरीर उस तरह से विकसित भी नहीं है, वे राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं और वे कृष्ण और राधा के जो बहुत जो जो एकांतिक लीलाएं हैं उनको भी देखती हैं। तो उनका अधिकार जो है बहुत अधिक है राधा रानी की, राधा कृष्ण की जो एकांतिक लीलाएं हैं उनमें भी वो जो है रहती हैं। तो मंजरियों का जो है बहुत ज़्यादा अधिकार है और वे जो है मतलब राधा रानी की सेवा में ही केवल लगी रहती हैं और ये उनका जो है एक विशेष आनंद है, क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करती हैं, कृष्ण की आत्मा है तो इसलिए उनको सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इसको इतना ही समझिए क्योंकि इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है?
जी यहाँ पे जैसे बताया कि सिद्धि देह चिंती, वो सिद्ध
सिद्धि,
देह
सिद्ध
का,
दे सिद्ध है
हाँ सिद्ध देह चिंतन करता है और उस फिर सेवा करता है भगवान की, और फिर सखे भाव में उसे राधा कृष्ण फिर चरण प्राप्त होता है। तो बोला जा रहा है कि इस शरीर में वो सिद्ध देह का चिंतन करता है और इसमें सेवा करता है, और फिर उसे सखे भाव में राधा
हाँ, इसका एक अर्थ ये भी है, सिद्ध देहे चिंती करे तहाई सेवन। तो सिद्ध देह का मतलब ये है कि शुरुआत तो आपकी होती है इससे कि जन्म कर्म समय दिव्यम, कि आप कृष्ण के जन्म कर्म का जो दिव्य हैं उनका चिंतन करते हैं और शुद्धिकरण होता है तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है भौतिक कल्मश से, तो सिद्ध देह विकसित होने लगता है। तो फिर उस सिद्ध देह जो विकसित हो रहा है उसी में आप चिंतन करते हैं कृष्ण का, और वो भाव भी जो है विकसित होने लगता है, सिद्ध देह के अनुसार भाव भी विकसित होने लगता है। तो वो सिद्ध देह पूरा विकसित नहीं हुआ, आध्यात्मिक से पूरा विकसित नहीं हुआ और आपको पूरा स्वरूप अपना पता भी नहीं चला, इतना पता चला कि आप दास हैं। अब किस भाव में दास हैं फिर धीरे धीरे पता चला किस भाव में दास हैं। तो फिर सिद्ध देह जब पूरा विकसित हो जाता है तो आपका अपना पूरा जो है नाम और अपना पूरा जो रूप है वो सब कुछ पता चल जाता है कि आप क्या हैं वास्तव में। तो सिद्ध देह पूरा विकसित हो जाएगा तो शरीर छोड़ने के बाद आप सीधे गोलोक धाम में जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस शरीर में अभी पूरा विकसित नहीं हुआ तो अभी उस सिद्ध देह में आप चिंतन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि सिद्ध देह का अर्थ है परिपूर्ण आध्यात्मिक देह। तो परिपूर्ण आध्यात्मिक देह आपको अगर इसी शरीर में अगर वो हो गया, विकसित हो गया, सिद्ध देह विकसित हो गया तो फिर आप जो है सीधे वहां जाएंगे, सीधे वहां जाएंगे क्योंकि फिर आपका जो चिंतन पूर्ण हो गया, परिपूर्ण हो गया चिंतन, तो इसी शरीर में ही आपको पता चल गया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं कमल मंजरी हूँ, उन्होंने अपने गीत में लिखा मैं कमल मंजरी हूँ, तो वो तो बद्ध जीव है ही नहीं, वो तो नित्य सिद्ध हैं, वो तो नित्य सिद्ध हैं। कोई जो है ऐसा हो सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का शरीर जो है सिद्ध देह विकसित हो सकता है इस शरीर के अंदर भी, क्योंकि तो प्रभुपाद ने जो विधि दी है वो पूर्ण है, तो इस विधि का पालन करके कोई अपने किसी भौतिक शरीर में भी सिद्ध देह को विकसित कर सकता है। ठीक है ना, और कोई आपका? हाँ, वो जो है अभी तो भौतिक शरीर में हम हैं तो वो सिद्ध देह नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिद्ध देह जो है फिर पूरा अपना जो है विकसित हो जाता है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। ये भौतिक जगत में है आत्मा का इतना छोटा साइज, अणु अणु साइज, आध्यात्मिक जगत में थोड़ी सब आत्मा इतने छोटे होते हैं ऐसा थोड़ी है। हाँ जी,
सिद्धि का चिंतन करेगा फिर राधा कृष्ण से प्राप्त करेगा, तो रागानुभक्ति में जो साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य में तो भी उसका भी चिंतन कर सकता है, जरूरी कि रागानु भक्ति वाले।
अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि यशोदा पुत्र, यशोदा के पुत्र हैं कृष्ण हैं, तो उसमें चाहे सखा भाव हो चाहे दास भाव हो, उसमें माधुर्य की प्रधानता है कि यशोदा के पुत्र हैं, और मनुष्य भाव यहाँ पर तत्व चिंतन से भी ऊपर ये जो है उस भाव का चिंतन है, तो उसमें मनुष्य भाव में है, किस मनुष्य भाव में है, यशोदा के पुत्र के रूप में वहां पर गौ में चराना उनका काम है, तो इस भाव में वो कृष्ण का दास बने। तो रागानुग का मतलब ये है कि मनुष्य भाव में कृष्ण का चिंतन करना। आप तत्व का चिंतन करते हैं तो आप नहीं प्राप्त कर
सभी रागानुग भक्ति हुआ
रागानुग, तो है कि यशोदा के पुत्र हैं, ये यही पहचान है कृष्ण की, नंद के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं। ठीक
जी, जैसा आपने बताया कि वैदिक मार्ग से जो भक्ति करते हैं तो क्या वो भाव और प्रेम के स्तर पे आके वो वैकुंठ में रहते हैं या गोलोक भी जन?
वैदिक मार्ग से जो है शुद्धिकरण होता है, तो अभी शुरू शुरू में तो आपको वैदिक मार्ग का ही पालन करना होगा, आप रागानुग में नहीं जा सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति होती है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, तो फिर यहाँ फिर आपकी जो है रागानों का भक्ति, अगर आपका स्वरूप है इस तरह का तो रागानों का भक्ति में आप आ जाएंगे, अगर वैकुंठ में स्वरूप है तो आप तत्व का चिंतन करेंगे। ठीक है ना? नहीं, भाव प्रेम के स्तर में जाते हैं, और वैकुंठ में भी जो है, मतलब भाव है और प्रेम, और प्रेम के स्तर पर जाकर कहीं आप वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे तो प्रेम, लेकिन उसमें तत्व चिंतन होता है कि भगवान जो है, भगवान का तत्व क्या है। ठीक है ना? गुरु धाम में तत्व का चिंतन नहीं होता है, वो यशोदा पुत्र का चिंतन होता है कि यशोदा के पुत्र है।
मतलब ये भाव और प्रेम जो है, ये वो जो पांच प्रमुख रस है उनमें नहीं होता है, जो वैकुंठ वासियों में जो भाव और प्रेम है वो जो पांच प्रमुख रस है उनमें नहीं हो रहा है।
हाँ, वैकुंठ में शांत भाव है, शांत रस है, और दास रस है। ठीक है ना? सख है वात्सल्य माधुर्य। और कोई आपका अभी जो कई लोग तो एक प्रश्न चलो
आध्यात्मिक जगत में भी गुरु की अनुमति लेके सेवा करता है भाग जाता है।
आध्यात्मिक जगत में जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु तत्व जो है ये मतलब हमेशा अपने साथ रहता है। गुरु तत्व का मतलब है जो शिक्षाएं आपने प्राप्त की हैं, तो वो जो है तत्व है, जो शिक्षा का तत्व है वही गुरु तत्व है, जो कि आप आपके साथ रहता है, जन्म जन्म साथ में रहता है, तो इसलिए हम कभी मतलब ऐसा समझने लगते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण की जब शरण प्राप्त हो जाती है तो वो जो है मतलब सब ऋण से मुक्त हो जाता है, और गुरु यही चाहते हैं, गुरु का उद्देश्य यही है कि आप पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में जाएं। ठीक है ना? तो गुरु का जो है आपका ऋण उतर जाता है कि कृष्ण की सेवा जब आप करते हैं तो आप सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना? जब तक आप इस भौतिक शरीर में हैं आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है ना? जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है तो जो है आप उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि उस भाव से मुक्त हो जाते हैं, आप कृष्ण के सेवा में या अपनी उस पहचान में, आध्यात्मिक पहचान में आप इतने निमग्न हो जाते हैं कि आपको याद भी नहीं रहता कि पहले आप क्या थे और आपका क्या संबंध था, गुरु शिष्य का संबंध भी आप नहीं जानते। ठीक है ना? वो जागृत हो जाता है जब संबंध भगवान के साथ में, तो वो संबंध जो है फिर आप अगर जानते भी हैं कि गुरु के रूप में, तो आप ये जानते हैं कि भगवान ने ही जो है गुरु के रूप में मुझे भेजा, उनको भेजा। ठीक है ना? तो भगवान की ही आप कृपा देखते हैं कि भगवान ही गुरु के रूप में आए या अपने सेवक गुरु को जो है मेरे पास भेजा था, और भगवान ही सर्व कारण कारण है। ठीक है ना? धन्यवाद। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव गौर निताई की जय।